मन्नू भंडारी का अगला कहानी संग्रह त्रिशंकु और अन्य कहानियाँ, पृष्ठ 45। मन्नू भंडारी के इस कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ संग्रहित है। एक कहानी एक हाने आकाश नाई उसके कहानी संग्रह मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियों के संदर्भ में पहले ही मूल्यांकित हो चुकी है। इसके अंतर्गत अन्य कहानियाँ हैं, पहला आते जाते यायावर, दूसरा दरार भरने की दरार, तीसरा स्त्री सुबोधनी, चौथा सायद, पांचवा त्रिशंकु, छठवा रेत की दीवार, सातवा तीसरा हिस्सा, आठवा अलगाव। पृष्ठ 46, शीर्षक आते जाते यायावर। इसमें पुरुष की यायावरी प्रवृत्ति की ओर दृष्टिपात किया गया है। पुरुष अपनी आंतरिक कमजोरियों को छिपाकर सामने वाली नारी के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। विवाहित होकर भी वह कुंवारी स्त्री को ऐसे फंसाता है कि नारी उसके झूठे प्रेम प्रपंच में फंस जाती है। एक ओर पुरुष पत्नी को छलता है, दूसरी ओर प्रेमिका को। नारी प्राचीन काल में भी पुरुषों की यायावरी प्रवृत्ति के तहत ठगी जाती रही है और आधुनिक युग में भी ठगी जा रही है, जबकि आज वह आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर है। नायिका मिताली का संक्षिप्त परिचय नरेन नामक विवाहित पुरुष से होता है। नरेन मिताली से घनिष्ठ मित्र के समान व्यवहार करता है। अपनी पत्नी से कटु संबंधों की चर्चा के साथ साथ अपनी विद्वता की सारी बात बताकर उसे वह वाक जाल में फंसा लेता है। नायिका उसके प्रति आकर्षित होती है। अधिकांश कहानियों में मनु जी की कथा का आधार दाम्पत्य जीवन ही है। उनमें दाम्पत्य जीवन के समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। आज की नारी ने अपने को आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बना लिया है। जो नारी अपने को जीवन में अकेले चलने लायक बना लेती है, वह पुरुष के अहम को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भीतर स्वयं एक स्वाभिमान का जन्म हो जाता है। तभी तो श्रुति कहती है, इन्वर्टेड कमापन, विभू यह सोचते हैं कि मैं अलग नहीं रह सकती। स्वभाव से मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, हर आदमी किसी न किसी पर निर्भर करता है। मैं भी डिपेंड करती हूँ, पर विभू पर नहीं। डैश खाने के लिए अपनी नौकरी पर निर्भर करती हूँ और जीने के लिए अपनी कला पर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस प्रकार विभू और श्रुति आपस में परस्पर अति अहम के कारण लड़ते हैं तथा अपने परिवार की नींव को खोखला करते रहते हैं। अगली कहानी स्त्री सुबोधनी। यह कहानी नारी जीवन में आई आधुनिक विसंगतियों की कहानी है। पुरातन संस्कारों के बीच स्वयं का संघर्ष है। उसमें प्रेम के आधुनिक स्वरूप का विशद चित्रण हुआ है। यह स्वाभाविक ढंग की कहानी है। इसमें आज के सामाजिक परिवेश पर तीखा व्यंग किया गया है। नायिका अपने अनुभवों को पाठक के सामने रखकर उन्हें अवगत कराती है कि जीवन में विवाहिता पुरुष कभी भी सगा नहीं हो सकता। सिंधे साहब विवाहित रहते हैं, परंतु हमेशा ही अपने को पत्नी से परेशान और दुखी बताते हैं। वे जीवन में दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। पत्नी और प्रेमिका दोनों को छलते रहते हैं, दोनों की ही भावनाओं से खेलते रहते हैं। पृष्ठ 47। मनु जी ऐसे पुरुषों के जाल से बचने की सलाह देती हैं। इस कहानी में वे लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ठेठ दुनियादारी की बातें अपनी हजार हजार मासूम किशोरी बहनों के पल्ले से बांध दूं, जिससे वे मेरी तरह भटकने से बच जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मन्नू भंडारी त्रिशंकु और अन्य कहानियाँ, त्रिसुबोधनी कहानी, अक्षर प्रकाशन द्वितीय संस्करण 1981, पृष्ठ 76। आधुनिक समाज में आज की नारी अपने भविष्य एवं विवाह के बारे में स्वयं निर्णय लेती है। कभी कभी जीवन में उनके कच्चे अनुभव के कारण उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कच्चे अनुभव होने के कारण सीधी साधी नारियों का शोषण पुरुष जाति के द्वारा होता ही रहता है। भविष्य में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। नारी को सिर्फ अकेलापन हाथ लगता है। विवाहित पुरुष के साथ कुंवारी नारी का संबंध कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकता। पुरुष अपनी गृहस्थी और बच्चों को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाता। वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाकर चलता है और कुंवारी नारी का शोषण करता है। अगली कहानी शायद। संग्रह की चौथी कहानी शायद परिस्थितियों के कुचक्रों की कहानी है। निर्धनता एक ऐसी समस्या है जिससे भारत की 70% जनता प्रभावित है। कहानी का नायक परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए जहाज पर काम करने जाता है। युवक की चेतना शून्य हो जाती है। परिवार के बच्चों की समस्याओं से जूझते जूझते वह थक जाता है। स्वयं की पुत्री की मृत्यु पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। उसका व्यवहार चेतना शून्य व्यक्ति के समान हो जाता है। जब मनुष्य के सामने समस्याओं दुखों का पहाड़ सा खड़ा होता है तो मनुष्य को पुत्री की मृत्यु पर सुख दुख का एहसास भी नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। राखाल को न उसके होने की कोई खुशी थी, न मरने का कोई गम। एक हल्की सी भावना थी कि चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ उसके पीछे ही हो गया। साथ ही मन में कहीं उभरा, अच्छा हुआ कि इस बात को भी अब से 1.5 साल हो गया, वरना सारी छुट्टियां मातम पुर्सी में ही बीत जाती। डैश जाने क्यों उसे लगने लगा जैसे वही किसी और के बारे में सुन रहा हो, मानो उस मृत बच्ची से, माला के दुख से उसका कोई संबंध ही नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मनु भंडारी त्रिशंकु तथा अन्य कहानियाँ, शायद कहानी, 1995, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ 47। आज आधुनिक जीवन में पारिवारिक संबंधों का, संस्कारों का अवमूल्यन तीव्र गति से हो रहा है। दाम्पत्य संबंधों में स्वार्थ और अहम प्रमुख हो गया है। 7 जन्मों के संबंधों की बात झूठी सिद्ध हो रही है। उपर्युक्त कथा बिंदु के विश्लेषण से संबंधों के अवमूल्यन की बात सिद्ध हो रही है। अगली कहानी त्रिशंकु। दोहरी मानसिकता आधुनिक युग की देन है। आज आधुनिकता का ढोंग कर रहे पृष्ठ 48 बुद्धिजीवियों पर कहानी त्रिशंकु एक कटाक्ष के रूप में है। त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी का एक व्यंग मात्र ही नहीं है, वरन वह उन लोगों की आगाही भी है कि समाज से हटकर चलने वालों को, संस्कारों को तोड़ने वालों को समाज में कितनी बदनामी उठानी पड़ती है। तनु की मम्मी ने प्रेम विवाह किया था। उन्हें यह गर्व होता था कि प्रेम विवाह करके उन्होंने लीक से हटकर नाम किया। उसे समाज में समाज विरोधी कार्य करके आधुनिक होने का गर्व होता है। मोहल्ले में कमरा किराए पर लेकर कुछ लड़के नाजुक उम्र की तनु को छेड़ते थे। समाज में कुछ नया करने के दम से लदी फदी तनु की माँ और पिताजी उन्हें, ब्रैकेट में, बिगड़े जवान शरारती लड़कों को अपने घर में बार बार आने का न्योता देकर चले जाते हैं। अब तो रात दिन बस लड़के उनके घर में उधम चौकड़ी मचाते रहते हैं। नाजुक उम्र की तनु हमेशा ही 3-4 लड़कों से घिरी रहती है। पास पड़ोसी उनके घर में ताकते झाकते रहते हैं। अब तनु के माता पिता को यह आधुनिकता महंगी पड़ने लगी। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। गाना बजाना भी होता है और चाय पानी भी। शुरू में जिन लड़कों ने मुक्त रहो और मुक्त रखो की बड़ी प्रशंसा की थी, उन्होंने मुक्त रहने का जो रूप देखा तो उनकी आंखों में भी कुछ अजीब सी शंकाएं तैरने लगी। मम्मी के एकाध मित्र ने दबी जुबान में कहा भी, तनु तो बहुत फास्ट चल रही है। मम्मी का अपना सारा उत्साह मंद पड़ गया था और लीक से हटकर कुछ करने की फिक्र पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें इस नंगी सच्चाई को झेलना था कि उनकी जरूरत ही से कच्ची और नाजुक उम्र की लड़की 3-4 लड़कों के बीच घिरी रहती है। मम्मी की स्थिति यह थी कि वह न इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थी और न अपने द्वारा बड़े जोश में शुरू किए इस सिलसिले को नकार ही पा रही थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मन्नू भंडारी त्रिशंकु कहानियाँ, प्रथम संस्करण 1995, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ 71। आज अति आधुनिकता ने लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया है। दोहरी मानसिकता रखने वाले अति आधुनिक लोगों पर मन्नू जी का यह करारा व्यंग है। अपनी पुत्री की बदनामी होते देख बड़े बड़े आधुनिक लोग संस्कारशील बनने के लिए विवश हो जाते हैं। अगली कहानी रेत की दीवार। इसमें नायक रवि इंजीनियरिंग का छात्र है। पारिवारिक प्रेम की नई सच्चाइयां उसके सामने आती हैं। आर्थिक समस्याओं के बढ़ते जाल से कोई भी पारिवारिक संबंध अछूता नहीं रह गया है। सारे संबंध बस धन से ही जुड़ गए हैं। माँ बाप लड़के को प्रेम देते हैं, पढ़ाते हैं, केवल इसलिए कि कल वह एक कमाऊ बेटा बनकर उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करेगा। पुत्र भी अपने प्रति पिता के अंतर्निहित स्वार्थ के कारण अपने हृदय में सिवाय नफरत के कुछ भी महसूस नहीं करता। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। उसे लगा बाबू अम्मा के अतिरिक्त सहनशीलता और त्याग, चंदा की समझदारी, सब जैसे एक गुप्त षड्यंत्र के हिस्से हैं। पृष्ठ 49, जो उसके खिलाफ रचा गया है, यह तो मीर जी की चड्डी वाला खेल हो गया। उसे पता भी नहीं लगने दिया और किस तरह बाबू सबके साथ घोड़ी बनकर उकसा उकसा कर उससे सवारी करवाते रहे, और अब जैसे सब चुपचाप उस पर सवारी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे महीन चाल चली है बाबू ने। ". अगली कहानी, तीसरा हिस्सा। इसमें पुरुषों को बेरोजगारी इतना अधिक तोड़ देती है कि उनकी पत्नियों के सामने बोलती बंद हो जाती है। मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई इस कहानी का नायक सेरा बाबू एक चिड़चिड़ा और गुस्सैल प्रवृत्ति का एक पुरुष है। कभी कभी वह स्वयं पागलों के समान वार्तालाप करता है, सारे संबंधों का अपनी दृष्टि से आकलन करता है। दूसरे क्या सोचते हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, इसकी सेरा बाबू को रंज मात्र भी परवाह नहीं होती। अगली कहानी, अलगाव। मनु जी की यह कहानी इस संग्रह की 7वीं कहानी है। यह कहानी पूर्णतः राजनीतिक परिस्थितियों पर लिखी गई है। विश्वेश्वर की लाश को ढूंढने को लेकर शुरू हुई यह कहानी राजनीतिक दाव पेचों को उजागर करती है। राजनीतिक स्थितियों पर व्यंग करते हुए लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि अब हत्यारा भी बच सकता है, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थी और हत्यारों की शरणागाह बनती जा रही है। वस्तुतः यह एक लंबी कहानी है जिसमें समकालीन राजनीतिक समस्याओं को उजागर किया गया है। अगली कहानी, आकाश के आईने में। अपनी जड़ों से जुड़ने की चाहत, अपने गांव के घर से सुकून ढूंढने का प्रयत्न और उस प्रयत्न में विफल हो जाना ही कहानी के मुख्य बिंदु है। लेखा महानगरीय जीवन से त्रस्त हो चुकी थी। भागदौड़ के जीवन में उसकी मानसिक शांति भी खो गई थी। उसके रोज गिरते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए लेखा के पति ने उसे गाँव जाने की सलाह दी। लेखा तोहफों से लदी फदी ससुराल पहुँचती है, उसका स्वागत होता है, पर क्षुद्र मानसिकता के तहत ससुराल में सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता। लेखा शांति की खोज में, आराम एवं सुख की खोज में महानगर से गांव जाती है, पर वहां भी हर ओर झगड़े का ही स्वर सुनाई देता है। ". लेखा ने करवटे बदली। उसने सोचा कल वह दिनेश को लिखेगी कि वह जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करे। उसे एकाएक ही दिनेश की याद आने लगी। गहरे नीले आसमान के तीरे अभी भी वैसे ही सिलसिला चला रहे हैं, पर इस बार लेखा को लगा जैसे एक आईना चूर चूर होकर बिखर गया हो। ". संदर्भ ग्रंथ, मनु भंडारी, त्रिशंकु संग्रह, राधा कृष्ण प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1995, पृष्ठ 146। अगली कहानी, असामयिक मृत्यु, पृष्ठ 50। मनु भंडारी भावनाओं की समर्थ चित्रकार हैं। उनकी कहानी असामयिक मृत्यु में मनुष्य उधार की जिंदगी जीता है। उसे जीवन के हर क्षण को दूसरों के लिए जीना पड़ता है, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। पिता की मृत्यु के बाद दीपू अपनी अभिनय कला को तिलांजलि देकर परिवार के लिए रोजी रोटी का प्रबंध करने लगता है। पिता की असामयिक मृत्यु के साथ ही उसकी कला की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। एक तरह से एक कलाकार की मृत्यु, एक अस्तित्व की मृत्यु हो जाती है। ". तुम्हारा बेटा जीनियस है शरद जीनियस, देखा इतना नाम करेगा, - किसकी बरसी की बात कर रहा है राजू। ". संदर्भ ग्रंथ, मनु भंडारी, त्रिशंकु, कहानी संग्रह, कहानी असामयिक मृत्यु, पृष्ठ 167। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि माँ राजू के कलाकारी की मृत्यु को बरसी की बात कहती है। राजू अपनी अभिनय यात्रा को छोड़कर अपने अस्तित्व को मार कर जी रहा है।